अध्याय 17। सारी रंगदारी लाल लाल। खंड 1। गुलाब बाड़ी की गुलाबी महफिल में गुलाबी परिच्छेद और गुलाब के ही गहने पहनकर गुलशन गुलबदन गुलबहार ने अपने कोकिल कंठ से वसंत राग में कल्लेबाजी का वह गुलकिलाया कि श्रोताओं की मंडली बुलबुल बन बैठ। ऊपर गुलाबी चदवे से लटकते हुए गुलाबी शीशे की छाड़ फानों से गुलाबी प्रकाश छलक रहा था और नीचे फर्श गुलाब की पंखुड़ियों से ढकसा गया था। उस पर बैठे श्रोताओं की आंखें नैश जागरण और नशा सेवन से लाल हो रही थी। उस पर गुलाबी वातावरण में सारी रंगदारी लाल लाल की टीप ने उनका रंग और भी काढ़ा कर दिया। प्रभाती बिहार में सूरखमुखी के गुच्छों की तरह उनके सिर हिलने लगे और मस्ती का समय ऐसा बंधा कि हिमालय मुकुट की शोभा बढ़ाने वाले भारी भरकम देवदारू के वृक्षों की भांति वे बार बार झूमने लगे। वे भौरों की तरह गुनगुनाते रह गए सारी रंगदारी लाल लाल। जाड़े के उतरते दिन थे, फिर भी सेठ देवीचरण ने साधारणतः चैत्र मास में होने वाली गुलाब बाड़ी की महफिल बेमौसम ही जमा रखी थी। काले बाजार की बरकत से मुंह की लाली बची रह जाने का यह स्वाभाविक परिणाम था। उनका दिवाला पिटने ही वाला था कि समय ने पलटा खाया। उनकी शाख जन ने सीधे शेषनाग के मस्तक पर जाकर आसन जमा लिया। इसी खुशी में चैती गुलाब फूलने की प्रतीक्षा न कर उन्होंने गुलाब के साधारण फूलों से ही गुलाब बाड़ी का आयोजन कर डाला और उसके लिए उन्हें बहाना मिल गया कि अपने इकलौते बेटे ललन की वर्षगांठ का। व्यापार के जंगली शिकारी ने एक ही ढेल से दो शिकार कर लिए। खंड 2। जिस जवान बेटे की वर्षगांठ के ब्याज से बूढ़ा बाप महफिल सजाने का लड़कपन कर नगर के बाहर मरुआडी के बगीचे के बारह दरी में विलास का रास रचा रहा था, वहीं बेटा उसी बगीचे के कोने में उपेक्षित खड़ी झोपड़ी के एकसित अंधकार में कोठरी में अपने साई सुलोचन के शिशु पुत्र की परिचर्या के ब्याज से बैठ अपने साथियों अर्थात अपनी पार्टी के लाल सदस्यों के साथ उसी सामने हुई एक घटना की प्रतिक्रिया के संबंध में गुण विचार कर रहा था। घटना बहुत साधारण थी, परंतु अपने अनोखेपन के कारण वह परम साधारण बन बैठी थी। बात यह थी कि एक उच्च सरकारी अधिकारी की कम्युनिस्ट पुत्री को उसके कॉलेज के हॉस्टल में गिरफ्तार करने जाकर कोतवाल की बड़ी झक उठानी पड़ी थी और जब कोतवाल ने उसे गिरफ्तार करने में किसी प्रकार सफलता पाई तो उक्त तरुणी ने उनके श्रम के पुरस्कार स्वरूप उन पर अपनी चप्पल फेंक दी। चप्पल कोतवाल को लगी या नहीं या किसी ने न देखा, लेकिन शहर में शोर मच गया कि एक तरुणी ने कोतवाल को चप्पल से मारा। यह समाचार प्रकाश में आते ही शहर भर के कम्युनिस्ट सहसाधिक अंधकार में चल गए। अंधेरे में छिपकर और भी छुटपुट गुट बनाकर मंत्रणा करने लगे। ललन का कॉमरेड दल विचार कर रहा था कि कुल रात भर की बात है, सवेरे घटना की प्रतिक्रिया स्पष्ट हो उठेगी, तब भावी कार्यक्रम बना लेना सरल होगा। ललन देख रहा था कि कम्युनिस्ट कीड़े में दीक्षित उसके वे छात्र साथी इस साधारण सी घटना से भी भयभीत उठे हैं। वह उन्हें उत्साहित करने के लिए बोला, साथियों घबराना नहीं, मैं साल दो साल तक जरूरत पड़ने पर तुम्हें छिपाए रख सकता हूँ। उनकी बात एक लाल तरुण ने कहा, साथी तुम समझते हो कि हम डरे हैं, किस नहीं, भय तो अज्ञान का परिणाम होता है। दूसरा बोला, पॉयड ने इसे सेक्स कॉम्प्लेक्स बताया है, हम लोग कमजोरी के शिकार कभी नहीं हो सकते। तीसरे लाल जवान ने कहा, समाज में आज भी भीषण विषमता व्याप्त है, उसके मूल में भी यही भय की वृत्ति काम कर रही है। ललन ने समझ लिया कि उसके साथी आश्वस्त हैं और इसलिए वे अब बहस में रस ले रहे हैं। उसने बगल वाली कोठरी की ओर देखा और धीरे से उठकर वह उसमें घुसा। यह कोठरी ऐसी थी जिसमें छोटे दरवाजे को छोड़कर वायु के प्रवेश के लिए दूसरा रंध तक न था। दिन में भी उसमें प्रकाश ले जाने की आवश्यकता पड़ती थी। ललन ने सिर झुकाकर कोठरी में प्रवेश किया। उसने घुसते ही देखा कि उसके पिता के मोटर चालक छिंगुर की पत्नी सुधा सास के बच्चे को गोद में लिए कोने में जलते मंद दीपक के प्रकाश में उसका मुंह बड़े ध्यान से देख रही है। उस थुमिल प्रकाश में सुधा के सुरुचि से सवारे केश पास के बीच ललाट से लेकर आधे सिर तक लिपटी सिंदूर की मोटी रेखा चमक रही है। उसके कानों की लौ से लटकते लाल कांच जड़े टप दीपक की लौ की तरह रह रहकर खिल उठते हैं। शुभ्र परिधान ने कोठरी के कुत्सित वातावरण को भी जैसे ढक रखा है। ललन पैर दबाए खड़ा मिनट भर सुधा को देखता रह गया। सुधा अब युवती नहीं रह गई थी, अर्थात 37 वर्षों तक निरंतर दुनिया देख लेने के बाद नारी में युवती का अल्लड़पन नहीं रह जाता, समझदारी आ जाती है। समझदारी की प्रशंसा उसके पौरत्व पर निर्भर है। सुधा समझदार थी और वह स्नान में भीगी पतली साड़ी की तरह धीरे धीरे कठिनाई से अपना यौवन चीर उतारती जा रही थी। फिर भी वह किसी किसी रंग में लिपटा ही रहता था। वह सुंदरी तो थी ही, शिक्षिता भी थी। आश्चर्य की बात तो यह थी कि उसमें झिंगुर जैसे परम असांस्कृतिक नाम वाले अनपढ़ और श्रमिक श्रेणी के व्यक्ति को पति रूप से कैसे वर्ण कर लिया। झील भरी उस गंदी कोठरी में सुचिता की मूर्ति उस नारी को देखकर ललन के मुंह से लंबी सांस निकल पड़ी। उस शून्य और शांत कोठरी में निश्वास की ध्वनि धनुष टंकार हो गई। सुधा ने चौंक कर सिर उठाया। ललन को सामने खड़ा देख उसने कहा, दवा तो कुछ भी असर नहीं कर रही है। ललन उसकी बात अनसुनी करता हुआ उसे एकटक देखता रहा। सुधा ने स्मृति पूर्वक पूछा, क्या सोचते हो ललन बाबू? यही सोचता हूँ सुधा देवी, कि राजा से विवाह होने के बावजूद एक कंगाल के साथ दीनता और अभाव का यह कराहमय जीवन तुमने क्यों स्वीकार कर लिया? इतने ऊपर रहकर भी इतने नीचे क्यों उतर पड़ी? बहुत ऊपर जाने के लिए कभी कभी बहुत नीचे आना पड़ता है ललन बाबू। फिर भी ललन बाबू, आपने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर कब किसने दिया है? कहना ही पड़े तो यही कह सकती हूँ कि राजा के समीप मेरा कोई मूल्य न था। उसके यहाँ मैं कांच की माला थी, कोने में पड़ी थी उपेक्षित, परंतु जब भिखारी के हाथ लगी तो उसने मणिमाला की भांति मुझे सिर पर स्थान दिया, अपने गले का हार बना लिया। तइये मैंने उन्नति की यावनति। सुधा के गोद में पड़े बच्चे ने हिचकी ली। सुधा ने घबरा कर कहा, गरीब के बच्चे की जान बचाइए ललन बाबू। बच्चे की हालत खराब होती जा रही थी। ललन ने भी परिस्थिति की गुरुता महसूस की। उसने सुधा से पूछा, क्या झिंगुर को डॉक्टर बुलाने नहीं भेजा? भेज तो दिया है शाम ही से, इधर आधी रात बीत रही है, ना जाने क्यों नहीं लौटे। सुधा ने जवाब दिया। ललन ने कुछ सोचते हुए कहा, वैसे तो झिंगुर अनपढ़ होते हुए भी समझदार है, गरीब है फिर भी ना जाने कैसे उसके संस्कार बुजुर्वा हो गए हैं। गरीबों से तुम्हारी जैसी सहानुभूति और शोषण के प्रति तुम्हारे जैसा आक्रोश उसे कहां। सुधा को ललन की बात में चापलूसी की गंध लगी। उसने ललन की ओर मार्मिक दृष्टि देखते हुए कहा, बुजुर्वा संस्कार और प्रोलेटेरियट संस्कार में मुझे और कुछ विशेष अंतर नहीं दिखाई देता ललन बाबू। एक में हृदय का योग आवश्यकता से अधिक है तो दूसरे में बुद्धि का। पहला स्वार्थ की अधिकता से चिपचिपा हो गया है तो दूसरा प्रतिहिंसा से रूखा। यही कारण है कि आप प्रोलेटेरियट संस्कार रहते हुए भी इस पीड़ित शिशु की अपेक्षा कर बहस में अधिक दिलचस्पी ले रहे हैं। ललन के मुंह पर जैसे तमाचा पड़ा, उसने तत्काल कहा, मैं ही डॉक्टर को बुलाने जाता हूँ। खंड 3। सेठ देवी चरण की बाराहदरी में सर्दी भले गुलाबी हो गई हो, परंतु सड़क पर चलने वालों के लिए अब भी बहुत कड़ी थी। उस पर जिस समय ललन डॉक्टर बुलाने के लिए सड़क पर निकला, उसी समय न जाने कहां से बादल का एक टुकड़ा भी आकाश में फटता हुआ आ निकला। वह जैसे शून्य में अकेले भटकते भटकते दुखी होकर रो पड़ा और टपाटप बूंदे गिरने लगी। अंधेरे में ललन ठोकर खाता हुआ बड़ा जा रहा था। वह कटे स्वर में बड़बड़ा उठा, पिताजी को मेरी वर्षगांठ मनाने की जितनी चिंता है, उतनी जाड़े की वर्षा में मेरे भीगने की नहीं। बेमौसम की इस वर्षा ललन ने इस दृष्टि से देखा, उसे अपने ऊपर यह आकाश का अत्याचार प्रतीत हुआ। उसने सोचा कि आकाश भी बहुत ऊंचा है ना, इसके भी संस्कार बुजुर्वा ही दिखाई पड़ता है, और अशिक्षता पर वह मन ही मन हंस पड़ा। उसे ख्याल आया कि यही रात आज मेरे पिता की बाराहदरी में मधु की वर्षा कर रही है, वहाँ उच्छृंखल उल्लास की बाढ़ आ गई है। उस बाढ़ पर मदिरा की मादकता का फेन उतराया बहता जा रहा है, सौरभ की तरंगे उठ रही हैं और प्रलप रस की धारा में उठती हुई भ्रू विलास के भवर में भोग लोलुप मन उपचुप कर रहे हैं। गली में उभरे पत्थर के एक टुकड़े से उसे ठोकर लगी, वह गिरते गिरते बचा। उसे अपने पिता पर उत्तरोत्तर घृणा होती जा रही थी। अपने सारे कष्टों का दायित्व बाप के सिर रखते हुए वह सोच रहा था कि बेचारे साईश का बच्चा बीमार है, उसकी स्त्री भी पितृ गृह गई हुई है, बालक को कोई देखने सुनने वाला नहीं, और मेरे पिता है कि उसे ऐसी रात में भी छुट्टी नहीं देते। अपने विलास के सहयोगियों को ले जाने के लिए गाड़ी में जोत रखा है। उसे एक ठोकर और लगी और उसकी विचारधारा को भी। उसे झिंगुर पर गुस्सा आया, ऐसी रात में कमबख्त काहे का डॉक्टर खोजने निकला होगा। और झिंगुर का ख्याल आते ही उसे सुधा का ध्यान आ गया। उस रात की बात याद आई जब झिंगुर सुधा को दरवाजे पर खड़ी कर उसके पिता के पास न आकर उसी के पास आया था और सारी कथा सुनाकर उसे आश्रय की भिक्षा मांगी थी। उन दिनों ललन विमेन हेटर के नाम से प्रसिद्ध था, परंतु सुधा का मुख देखते ही उसका नारी द्वेष न जाने कहां उड़ गया था। उसने तत्काल दोनों को आश्रय दे दिया। उस घटना के 23 वर्ष बाद आज वह पुनः सोचने लगा कि आखिर सुधा ने झिंगुर में देखा क्या, और डॉक्टर का मकान आ गया। खंड 4। रात के चौथे पहर जब शीत की अधिकता बढ़ी तो सुधा की गोद में पड़े रुग्ण बालक को हिचकी आई और उसने दम तोड़ दिया। सुधा की आंखों में आग की दो बूंदे मृत शिशु के पीले चेहरे पर चू पड़ी। उसने आंचल के छोर से तुरंत अपनी आंखें पोछ डाली और मृत शिशु को अपनी गोद में गोद से उतार भूमि पर पड़ी कत्था पर डाल दिया। कोठरी में हवा का तीखा झोंका आया और निष्प्रभ दीप एक बार फड़फड़ाकर बुझ गया। अंधकार में एक नन्हे से जीव के अंत के सामने सुधा अपने अंधकार में जीवन पर विद्युत दृष्टि डालने लगी। वह सोचने लगी कि दुनिया समझती है कि मैं झिंगुर के प्रेम में पड़कर गृह त्यागनी हो गई। उसे यह कौन बताए कि मेरे गृह त्याग का कारण प्रेम नहीं था, उत्कट घृणा थी। और भी भ्रमान्वित होने में अनजान दुनिया का क्या दोष। मैं भी तो इसी भ्रम में कि मेरे पति मेरी सौत को प्यार करते हैं, एक कोयले वाले की ओर आकृष्ट हो परिवार के मुंह पर कालिक लगाने के लिए तैयार हो गई थी। पति के प्रति घृणा ने मुझे एक मोटर चालक की अंकशायिनी बना दिया। सुधा अपने जीवन का अतीत चलचित्र की भांति देखने लगी। उसे देखा कि वह अपने पति राय साहब साधुराम के कमरे में सफाई कर रही है। शाम के 7 बजे हैं। उस समय नगर में बिजली नहीं लगी थी, बिजली घर बन रहा था। राय साहब की सैया के सिरहाने खिड़की के ठीक सामने होमी समाधान जल रहा था। उसी समय उसकी सौत ने पति के तरुण मोटर चालक झिंगुर को कोई चीज ले आने के लिए उसी कमरे में भेजा। झिंगुर वहाँ आकर मांगी हुई वस्तु खोजने लगा। आज ही की तरह उस दिन भी हवा का करारा झोंका आया। उस झोंके से कमरे का दरवाजा बंद हो गया, समाधान भी बुझ गया। उसने जब रोशनी लाने के लिए बाहर निकलने का प्रयत्न किया तो टेबल से टकरा कर पति के सैया पर गिर पड़ी। छरबड़ का ही विलम्ब न हुआ था कि दरवाजा खुला और राय साहब ने कमरे में प्रवेश किया और यह पूछते हुए कि कौन है उन्होंने टॉर्च का बटन दबा दिया। कमरे में उज्जवल प्रकाश फैल गया। राय साहब ने देखा कि सुधा सैया पर से उठ रही है और पायताने घबराई मुद्रा में उनका मोटर चालक झिंगुर खड़ा है। यह दृश्य देख राय साहब निर्विकार भाव से हंसे और कमरे का दरवाजा पूर्ववत बंद करते हुए बाहर निकल गए। सुधा सोचने लगी कि यदि अपने मन के भ्रमवश राय साहब ने उसे 2 तमाचे लगा दिए होते या 10-5 ऊंची नीची ही सुना दी होती तो शायद वह कुल त्यागनी न बनती। परंतु राय साहब के इस उपेक्षापूर्ण आचरण ने भली भांति प्रकट कर दिया कि उसके पत्नित्व का मूल उसके पति की दृष्टि में कौड़ी भर भी नहीं है। वह न उनके प्यार की वस्तु है न उनके गौरव। उसके किसी भी आचरण से उसका कुछ बनता बिगड़ता नहीं, वह उनकी उपेक्षा दासी मात्र है। उसने उसी रात 12 बजे झिंगुर के सत्कृत त्याग कर पति की उपेक्षा रोग की चिकित्सा करना निश्चित किया और परिणाम स्वरूप स्वयं ही जीवन भर के लिए कलंक व्याधि से ग्रस्त हो गई। सुधा का मानव मंथन चल ही रहा था कि ललन ने कोठी के द्वार से ही कहा, सुधा देवी हमारा डॉक्टर तो स्वयं बीमार पड़ गया है, अब से बेरा हो ही रहा है, दूसरा डॉक्टर बुलवाऊंगा, अब डॉक्टर की जरूरत ना पड़ेगी। ललन बाबू कफन का बंदोबस्त कीजिए। हाँ यह बताए कि कहीं उनका भी कुछ पता चला, सुधा ने झिंगुर के संबंध में चिंतापूर्ण जिज्ञासा की। हाँ सुधा अभी ऊपर से देखे चला आ रहा हूँ, पाजी महफिल में बैठा वैश्याओं से आंखें लड़ा रहा है। आखिर तुमने उसे समझ क्या रखा था सुधा? जागरण अनाहार और श्रम से अवसन ने सुधा का मस्तिष्क ललन के स्वर से निहित व्यंग्य की झनकार चिंचना उठा। अपने स्पर्श से लोहे को भी पारस कर देने के उसके अभिमान को धक्का लगा। उसने जवाब दिया, मैंने उसे अपनी सिद्धि का साधन समझा था ललन बाबू, लेकिन उसने मेरी नाक काट ली। ललन खोखले गले से हंसा। सुधा शोभ से तिलमिला उठी। उसने ताक पर रखा हजिया टटोल कर उठा लिया और कोठरी के बाहर निकल कर बारहदरी की ओर छपटी। ललन ने पूछा, ऊपर कहाँ जा रही हो सुधा? जा रही हूँ झिंगुर ड्राइवर की नाक काटने, सुधा ने कहा। ललन भौचक वहीं खड़ा रह गया। जूतों के पास 4th श्रेणी के दर्शकों में बैठा हुआ झिंगुर भी गाना सुनकर मस्त हो गया था। जिधर वह बैठा था उसी ओर नाचते हुए मुंह कर गुलशन ने बड़ी ही मीठी टीप लड़ाई, सारी रंगदारी लाल लाल। झिंगुर ने अपनी राग रंजित आंखें गुलशन की नचीली आंखों से मिला दी और मुक्त मुद्रा में ललकारा, जरा भाव बता के भाई जी कैसे रंगदारी लाल लाल। गुलशन हाथों की पिचकारी बनाकर भाव बताने जा ही रही थी, रणचंडी की हुंकार जैसी सुधा की मेघ चंद्र धनी ने समूची महफिल को चौंका दिया। वह चिल्ला कर कह रही थी, ठहर जा अभी बताती हूँ कैसे रंग डाली लाल लाल, और उछल कर उसने हसिया से झिंगुर की नाक पर वार किया। वार ओछा पड़ा फिर भी नाक का कुछ हिस्सा कट ही गया, रक्त की धारा बह चली। झिंगुर ने दुपट्टे से अपनी नाक दबा ली। सुधा ने अट्टहास किया, उसके अट्टहास से सेठ देवी चरण चैतन्य हुए। उन्होंने चिल्ला कर कहा, निकालो इसे जल्दी बाहर, सिर पर शेर भर सिंदूर पोत कर सती बनने चली है। सुधा के सिर से उत्तेजना में आंचल हट गया था और मांग में सिंदूर की मोटी रेखा चमक रही थी। उसने हसिया वहीं फेंक दी और उछल कर सेठ के पास पहुँच कर उनके बगल में रखा गुलाब पाश उठा उसने अपने सिर पर उड़ेल लिया और हाथ में मल मिलकर सिंदूर धोने लगे। सेठ जी पर चीटा पड़ा तो वो उछले और सुधा की चोटी पकड़ कर हिलाते हुए चिल्लाए, निकल यहाँ से, अभी निकल, ले जा अपने खमस को भी, कि इस महफिल में क्या जरूरत। सुधा ने सेठ जी के सिर पर गुलाब पाश से तड़ातड़ सुरक्षित प्रहार करते हुए कहा, छोड़ छोड़ चांडाल, महफिल पे मजा अकेले तेरे लिए है। जीवन भर अन्याय अत्याचार सहकर भी जिन्होंने कभी मुंह नहीं खोला, प्रेम करने की भूख में जिनका सारा जीवन कलंकित हो गया, क्या उसके लिए भी इस महफिल का मजा नहीं? जो किसान है, मजदूर है, कूली है, क्या उनके लिए भी यह महफिल नहीं? जिनके घर में सदा अभाव रहता है, जिन्हें पर्याप्त भोजन और काफी वस्त्र तक नहीं प्राप्त होता, जो नकली इज्जत के बोझ में दबे हुए खुलकर सांस तक नहीं ले पाते, जिन्हें तेरे जैसे सेठ मध्यम वर्गी कहते हैं, क्या उनके लिए भी यह महफिल का आनंद नहीं? बोल बेमान, इस गुलाब बाड़ी के गुलाबों का रूप रसकन तेरे लिए ही है और उनके कांटे हमारे लिए ही। मैं तेरी इस महफिल में आग लगा दूंगी। प्रहार से घबरा कर सेठ जी ने सुधा के केश छोड़ दिए। उसने लपक कर दीवार की उतार ली और उसका शीशा जमीन पर पटक कर चूर चूर करते हुए उसमें की मोमबत्ती दीवार पर टंगे रेशमी पर्दों में लगा दी। झिंगुर हा हा करता हुआ दौड़ा, परंतु पर्दों में आग लग चुकी थी। झिंगुर उत्तेजनावश पागल सा हो गया। उसने तबलची की कमर में खोसा हुआ हथौड़ा उठाकर सीधे सुधा के सिर पर जमा दिया। नारियल फूटने जैसी आवाज हुई और सुधा जमीन पर गिर पड़ी। झिंगुर भी हथौड़ा फेंक कटे वृक्ष की तरह सुधा के निश्चय शरीर पर गिर पड़ा। हथौड़ा धमाके के ध्वनि के साथ हसिया के बगल में जा गिरा। बारह दरी चल रही थी इस पर समुची महफिल भागकर आंगन में निकल आई। लोगों ने सुधा और झिंगुर को भी खींचकर बाहर निकाल लिया। पुलिस और दमकल वाले भी पहुंच गए। सुधा तो ना उठ सकी, परंतु झिंगुर उठकर बैठ गया। उसने देखा कि अरुणोदय की लालिमा, सिंदूर की लालिमा, गुलाब के फूलों की लालिमा, आग की लालिमा, रक्त की लालिमा, पुलिस के लाल पगड़ी की लालिमा ने एक होकर उसकी लाल लाल आंखों के सामने लाल सागर लहरा दिया। लालू ने पूछा, झिंगुर तुमने यह क्या किया? झिंगुर ने रोते हुए जमीन पर पड़ी सुधा की ओर उंगली उठा दी और भर्राए हुए गले से उत्तर दिया, सरकार सारी रंगदारी लाल लाल।